सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्द भगवान् की जय। उमापति महादेव की जय। ॐ नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में हम लोग 112 श्लोक तक विचार कर लिए थे। जहां देखना, इस ग्रंथ के आरंभ में ही मैंने कई बार रोज बता रहा हूं कि तीन चीजें हैं, वैराग्य, बोध और भक्ति। इन तीनों माध्यम से ही, इन तीनों साधनों से ही हम उस तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। तो वैराग्य तो हो गया, कहां से? संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से। अब बोध चाहिए। तो बोध किसका चाहिए? जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है। इन तीनों का हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, बोध चाहिए। और जब बोध हो जाए तो भक्ति चाहिए। भक्ति माने जब हमने अपने स्वरूप को जान लिए, इस संसार की वास्तविकता का बोध कर लिया कि संसार अपने स्वरूप पर कल्पित है, तो संसार का चिंतन छूट करके उस परमात्मा का ही चिंतन बना रहे, हमेशा बना रहे, इसका नाम है भक्ति। भक्ति माने केवल आरती घुमा देना, प्रणाम कर लेना, प्रसाद चढ़ा देना, यही इसी का नाम भक्ति नहीं है। ये भक्ति के साधन है। इस बहाने हम उस परमात्मा का क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, लेकिन ये साधन है, साध नहीं है। साध क्या है? किसी भी अवस्था में कोई भी कर्म करते हुए आपकी चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप से नीचे गिरे न, इसका नाम क्या है? भक्ति है। इस पे चर्चा तो हम अगले सेशन में करेंगे, इस सेशन में नहीं, अगला सेशन माने अगले वर्ष, लेकिन इस साल ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो बताया कि ईश्वर किसको बोलते हैं? माया एक ही है, स्त्री एक ही है। जब राजा के साथ ब्याह दी जाए तो क्या बन जाती है? राजरानी। और नौकर के साथ ब्याह दी जाए तो नौकरानी। स्त्री एक ही है, तो वही माया यदि यदि ईश्वर उसको अधीन में रख ले, मतलब ब्रह्म अधीन में रख ले, तो उसी ब्रह्म का नाम क्या हो जाएगा? ईश्वर। और यदि वही ब्रह्म उसके अधीन हो जाए तो क्या बन जाएगा? जीव। तो ब्रह्म जीव में अंतर नहीं है, ध्यान देना, स्वरूपता दोनों एक है। एक वृत्ति का नाम है, किसका नाम है, एक वृत्ति से ही व्यक्ति जीव बन जाता है और उस वृत्ति से व्यक्ति क्या बन जाता है, ईश्वर। और वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, न ईश्वर है न जीव है बल्कि क्या है, ब्रह्म ही है। वास्तव में कौन है, ब्रह्म ही है। तो संशय आया कि जब तक उस स्वरूप को यदि जानना है, किसको, उस ब्रह्म स्वरूप को जानना है, तो उस ब्रह्म स्वरूप के ऊपर जितना ये आवरण है, जितना ये जगत है, उस जगत को एक बार हटाना पड़ेगा। हटाए बिना उस स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं। तो कौन कौन से जगत को हटाना है, तो बताया तीन जगत हैं, एक स्थूल जगत, दूसरा सूक्ष्म जगत और तीसरा कौन सा है, कारण जगत। तीन जगत हैं। तो स्थूल के भीतर कौन है, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म के भीतर कौन है, कारण है, और इन तीनों के भीतर कौन है, चौथा जो तुरी पद है, जो तीनों का कारण है, वह चौथा है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। वस्त्र के माध्यम से बताया गया था। स्थूल जगत की आसक्ति कैसे छूटे, इसके लिए पहले बता दिया गया, तो उसमें थोड़ा सा दोष देख लेना। क्या देखना है, स्थूल शरीर को हटाना नहीं है, स्थूल जगत को हम हटा भी नहीं सकते हैं। क्या हमें करना है, वो बना रहे लेकिन उसका चिंतन न होवे, यही उसका क्या है, हटाना है। इसके बाद स्थूल को हटाने के बाद स्थूल के भीतर जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के बारे में बताते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता और जाता है, जिसको श्रुति में अंगुष्ठ मात्र कहा है, उस शरीर का नाम क्या है, सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है, बोलो भाई, पांच, पांच यहां तो पांच बताया, पांच पंच महाभूत अर्थात पंच सूक्ष्म महाभूत। कौन से, स्थूल नहीं, स्थूल से तो शरीर बना है, पंचीकृत से क्या बना है, ये स्थूल शरीर बना है, अपंचीकृत माने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जो पांच तन्मात्राएं हैं, पांच प्राण है, पांच प्राण है, पांच इंद्रियां और सोलहवां है अंतःकरण। इन सब का संघात, इन सब का जो समूह है, इसका नाम क्या है, सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर ही एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में आता और जाता रहता है। अब अगला श्लोक है 113वां श्लोक। ऐसे बताएं, सूक्ष्म ही आपको सुख भी दुख देता है, सूक्ष्म शरीर ही आपको क्या देता है, कारण शरीर सुख दुख नहीं देता, क्या देता है, देखो सुषुप्ति में कब है, गहरी नींद में जब जाते हैं तो उसमें कारण शरीर है कि नहीं है, लेकिन क्या उसमें आपको कोई सुख दुख लगता है क्या, क्योंकि इस सूक्ष्म बीज रूप में विद्यमान है लेकिन प्रवृत्ति रूप में उत्पन्न नहीं हुआ है। अब प्रवृत्ति रूप में उत्पन्न न होने से उसमें कोई दुख है, और स्थूल में भी कोई दुख है क्या, क्यों भाई, ये स्थूल में भी कोई दुख नहीं है, ये तो जगह है, इसको क्या पता है सुख दुख का, इसको क्या पता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का। तो दुख किसमें है, सारा दुख, सारी अशांति, सारी खुराफात किसमें है, सूक्ष्म शरीर में ही है। ये सूक्ष्म ना दोनों की कड़ी है, बिचौलिया, जिसको क्या बोलते हैं, बिचौलिया है, किसका, स्थूल का भी और कारण का भी, एक बीच में क्या है, सूक्ष्म है, वही संबंध बना देता है किसमें, स्थूल से, और स्थूल से संबंध बना करके हम अपने आप को सुखी दुखी मान लेते हैं अनुकूल, क्योंकि मन में एक संस्कार है, मैं बार बार कह रहा हूं, मन में क्या है, एक संस्कार है, वो संस्कार के अनुसार कोई घटना घटित तो हो गई तो हम क्या हो जाते हैं, सुखी। अब मन में कोई संस्कार के अनुसार घटना घटित न होवे तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी। अज्ञानी क्या कहता है, हर प्रकार के संस्कारों से रहित रहता है, उसके मन में कोई संस्कार रहता नहीं है, रहता है तो सामान्य संस्कार रहता है, उस संस्कार के प्रति विशेष आग्रह नहीं करता। अज्ञानी तो ऐसा ही होना चाहिए, वो आग्रह करता है, लेकिन ज्ञानी का कोई आग्रह, जैसा होना है हो जाएगा, कोई आग्रह नहीं। आप क्या गए तो एक अज्ञानी ने, सही बताऊं, हम भी पहले जाते थे किसी घर में तो सोचते थे उसके घर में जाऊंगा तो नाश्ता मिलेगा, अब नाश्ता मिल गया तो क्या हो जाते थे? सुखी। और नाश्ता मिल जाए तो? अब ज्ञानी किसी भी प्रकार का कोई आग्रह लेके नहीं जाता है कि मिले तो भला, न मिले तो भला। तो जैसे भी परिस्थिति आती है, वह परिस्थिति, हर परिस्थिति में वह क्या रहता है? शांत रहता है। कल आप लोगों का मैसेज भी गया होगा यहां से, शायद हिंदी में गया था ना, कहा व्यक्ति को हालात नहीं दुख देता है। क्या हालात दुख देता है? ख्यालात दुख देता है। बाहर की परिस्थितियां नहीं दुख देती हैं। क्या दुख देती हैं? उन परिस्थितियों को आप किस विचार, किस ढंग से लेते हो, वह आपके विचार करने का तरीका आपको क्या देता है? दुख देता है। ध्यान देना, क्योंकि उसी परिस्थिति में ज्ञानी सुखी है और उसी परिस्थिति में ज्ञानी क्या है? दुखी है। तो वो परिस्थिति न सुख का कारण है, न वो परिस्थिति क्या है? दुख का कारण है। उस परिस्थिति को हम किस ढंग से विचार करते हैं, वह विचार ही आपको क्या दे रहा है? दुख दे रहा है। इसलिए आपका ख्यालात ही आपको क्या देता है? दुख देता है। हालात आपको कोई दुख नहीं देता है। कि देता है? हालात नहीं दुख दे रहा है। क्या दे रहा है दुख? ख्यालात ही आपको दुख दे रहा है। तो ख्यालात, सारे ख्यालात किसमें हैं? स्थूल में है कि कारण में है? सूक्ष्म में ही कारण है, सूक्ष्म ही है। इसलिए सारे दुखों का जगह कौन है? सूक्ष्म शरीर ही है। इसलिए इसका भी क्या करो आप? त्याग करो। त्याग माने इसके संस्कारों को भी आप क्या कर दो? हटाओ। अब संस्कार को हटावे तो, लेकिन संस्कार आते क्यों हैं? भाई जब तक संस्कारों का कारण का पता नहीं चलेगा तब तक संस्कार हटेंगे नहीं। तो संस्कार कहाँ हैं, क्यों आते हैं, इस पे चर्चा हम 113वें श्लोक से करते हैं। 113वां तत्कारणम स्मितम यत् तस्या अंतर्वासना जालम तस्य प्रवृत्तिर हेतुर बुद्ध्याश्रय मत्र तुरियम स्यात् तत्कारणम स्मितम। स्मितम माने कथितम। उसको कारण शरीर कहा गया है। किसको? उसको कारण शरीर कहा गया है। किसको? यत माने जो, तस्य अंतर, उस सूक्ष्म शरीर के भीतर क्या है? वासना जालम, जो वासनाओं का समूह है, जो वासनाओं का क्या है? समूह है। उस समूह का नाम क्या है? कारण शरीर। ध्यान देना, हमारा मन है, यदि वासना से रहित है तो मन ही ब्रह्म है। मन क्या है? चित्तम चिद्विजानीयात। आपका चित्त ही क्या है? चित्त है। चित्त लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? च छोटी की मात्रा, आधा त, फिर पूरा त। चित्त को क्या समझ लो? चित्त समझ लो। चित्त कब चित्त समझोगे? तकार रहितम यदा, जब चित्त से त हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? चित्त। चित्त माने चेतन, चेतन माने ब्रह्म। ये तकार क्या है? कि तकारो विषयाध्यास है। ये जो तकार है विषयों का अध्यास है। कैसा अध्यास है तकार? कहते पुष्परागो मगई यथा, जैसे पुष्प माने मगई, मगई है स्फटिक मगई है, उसके सामने लाल पुष्प रख दो तो कैसा दिखेगा? वो लाल है। अब पीला रख दोगे तो क्या दिखेगा? पीला। नीला रख दोगे तो क्या दिखेगा? नीला। लेकिन मगई वास्तव में कैसी है? शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस है नहीं। लेकिन जिस फूल का संपर्क मिलता है वह मगई क्या हो जाती है? उसी रूप वाली हो जाती है। तो आपका मन न स्वयं ब्रह्म ही है। आपका चित्त स्वयं क्या है? ब्रह्म है। लेकिन कब ब्रह्म है? जब उस मन में किसी वस्तु की कोई परछाई न पड़े तो, उस मन में किसी भी प्रकार का कोई संस्कार न होए तो। वो संस्कार के कारण चित्त बन जाता है। संस्कार के कारण क्या बन जाता है? मन बन जाता है। तो वही कहा गया है, जो उसके भीतर वासना का जाल है। किसके भीतर? मन के भीतर जो वासना के बीज पड़े हैं, उसी बीज का नाम है कारण शरीर। बीज का नाम ही क्या है? किसके बीज का? वासनाओं के जो बीज है, जो वासनाएं अभी क्रिया रूप में नहीं उद्भूत हुई हैं, केवल बीज रूप में पड़ी हुई हैं, उन्हीं का नाम क्या है? कारण शरीर। और जो क्रिया रूप में उत्पन्न हो जाएं, उनका नाम सूक्ष्म शरीर। ध्यान देना, एक बीज पड़ा है जमीन में, जब तक अंकुरित न होवे तब तक क्या है? शांत है, कारण है। और जब वही अंकुरित तो हो जाए तो क्या हो जाता है? देखना, एक ही है, आप तो जानते ही हो इतना। तो देखो, एक पौधा है, पौधा माने क्या होगा? छोटा। अब पेड़ माने? एक ही शब्द है, ध्यान देना है। आम का पौधा है, पहले आम का पेड़ बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। जब छोटा रहता है तो आम का क्या है? पौधा। और जब वही बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? आम का पेड़ है। देखना, सत्ता एक ही है, लेकिन जब छोटा है तो उसका नाम क्या है? पौधा। अब बड़ा हो गया तो पेड़ है। उसी प्रकार से जब संस्कार, वासनाओं के जो संस्कार हैं, क्रिया से युक्त नहीं है, उद्भूत नहीं हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, तो उसका नाम है कारण है। उसका नाम क्या है? कारण शरीर। और यदि वही संस्कार उत्पन्न हो गए तो उन्हीं का नाम क्या बन जाएगा? सूक्ष्म शरीर। और कुछ नहीं अंतर दोनों में, उसी का मन हो जाएगा। और इसे देखना, इंद्रियां क्या आपको दुख दे रही है? आंख, नाक, मुंह देख रहे हैं क्या? कुछ दुख दे रहे हैं क्या? लेकिन आंख में रूप को देखने का जो गहरा संस्कार बैठ गया, वो आपको सूक्ष्म शरीर बना दिया। नहीं, आंख पगी रहे, कान पगा रहे, जिह्वा पगी रहे, जिसे एक बच्चे के मन में अभी स्वाद का कोई संस्कार नहीं है, लेकिन स्वाद का संस्कार मौजूद है उसके भीतर, ऐसा नहीं है। तभी छोटे से बच्चे को भी ना, किसी बच्चे को नमकीन पसंद आती है, किसी बच्चे को, अभी उसको नमकीन मीठे का ज्ञान नहीं, लेकिन पूर्व के संस्कार मौजूद हैं। इसलिए जैसे परिस्थिति पैदा होती है वैसे संस्कार पैदा हो जाते हैं। भाई देखो, इसमें बरसात है, इस समय आप चना बो तो अंकुरित होगा कि सड़ जाएगा? और इसमें धान बो तो क्यों? बाहर का वातावरण जिस बीज के अनुकूल होगा वही पौधा बनेगा, नहीं पौधा। और जिस बीज के अनुकूल न होवे वह पौधा बनेगा क्या? वो तो वहीं सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति के भीतर अच्छे भी संस्कार मौजूद हैं, हर व्यक्ति के भीतर कैसे संस्कार मौजूद हैं? बुरे भी संस्कार मौजूद हैं। बाहर का वातावरण जिस बीज के अनुकूल होगा वह संस्कार उत्पन्न होगा। जिस प्रकार की वासनाओं के अनुकूल बाहर का संस्कार होगा वह संस्कार उत्पन्न होगा, और बाकी संस्कार क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। ये पक्का जान लेना। आजकल हमारे बच्चों कहते हैं बिगड़ रहे हैं हमारे बच्चे, तो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसमें दोष किसका है? बच्चे का क्या? सही बताऊं, बाहर के वातावरणों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मानो ना मानो, पहले एक संयुक्त परिवार रहा करता था, डॉक्टर नहीं थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता था, एक दूसरे गोदी में बैठते, एक दूसरे के भाई बहन चाचा ताऊ सब खेलते खालते रहते थे, उनको उल्टा सीधा चीज सोचने का अवसर ही, मौका ही नहीं मिलता था। कब सोचें? आजकल सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, और कैसे व्यस्त हैं आप जानते ही जानते हो, बिजी विदाउट बिजनेस, कोई काम नहीं है फिर भी व्यस्त हैं। अब बेचारे खाली बैठे हैं तो किसका साथ लेंगे? बोलो भाई, टीवी का, इंटरनेट का, उल्टी सीधी चीजों का संस्कार डालेंगे या दोस्तों के साथ जाएंगे? और दोस्त, दस दिन दोस्त शराब पीने वाले दोस्त के साथ बैठ जाएगा, दस दिन व्यक्ति सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ जाएगा, दस दिन व्यक्ति जुआ खेलने वाले के साथ बैठ जाएगा, बताओ उसके भीतर वो संस्कार पैदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? न इच्छा हो तो भी वो खिलवा देंगे, न इच्छा हो तो भी वो क्या करेंगे? पिलवा देंगे। उसमें उस बच्चे का दोष नहीं है, दोष किसका? दोष तो बच्चे का है, क्योंकि बीज तो मौजूद है। हम भी ऐसा नहीं, ताश खेलने वालों के साथ हम भी कभी बैठे, लेकिन हमारे भीतर तो संस्कार नहीं था, तो एक दलहा क्या दहला पकड़ है, वही खेल करके शांत हो गए। आगे हमें समझ ही नहीं आया आज तक। शेयर का मेरे अंदर संस्कार नहीं है, शेयर मार्केट का, तो शेयर मेरे को आज तक समझ नहीं आया। इतना निफ्टी बढ़ा, इतना कम हो गया, बस न्यूज में सुन लेता हूं, आज तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसके भीतर संस्कार होगा वो उसमें क्या करता है? इन्वॉल्व हो जाता है, घुस जाता है। तो हर व्यक्ति के भीतर संस्कार रूप से सब कुछ मौजूद है। बाहर का वातावरण जिस बीज के अनुकूल होगा वैसा बीज क्या होगा? अंकुरित तो होगा, बाकी के बीज क्या हो जाएंगे, शांत बीज रूप में पड़े रहेंगे। जब कभी संस्कार उस बीज के अनुकूल होगा तो वाला अंकुरित तो होगा। ये समझ में आ गया। अच्छा तीसरी चीज देखना, हम ये प्रारब्ध पुरुषार्थ का बहुत बड़ा दोष है। आप लोग कई लोग लड़ाई हमसे करते हैं, महाराज ये प्रारब्ध बड़ा है पुरुषार्थ बड़ा है, कई लोग हमसे बहसबाजी करते हैं, लेकिन यहां बहुत गहरी चीज समझना, ये प्रारब्ध ऐसी कोई चीज नहीं है, ध्यान देना। प्रारब्ध माने क्या हुआ, पूर्व जन्मों में आपने जो कर्म किया है उस कर्म का जो संस्कार आपके अंतःकरण में भरा बैठा पड़ा है उसी का नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध किसका नाम है, पूर्व जन्मों में जो आपने क्या किए हैं, कर्म किए हैं, उस कर्म का संस्कार बना कि नहीं बना होता। अरे भाई देखो, हम चिमन भाई से मिले हैं मान लो 10 साल पहले, और 10 साल के बाद चिमन भाई दिख जाएंगे तो पूरी प्रेम पूरी की बातें याद आएंगी नहीं आ जाएंगी। यदि मिले ही ना हुए तो कभी याद आएंगे क्या। तो यदि हमने किसी से मिला है, किसी से बात किया है, किसी को हमने कुछ दिया है, किसी को हमने कुछ लिया है, तो उससे क्या होगा, किसी से कर्जा लिए हो, किसी से आपने कर्जा लिया है, वो आदमी जैसे दिखेगा आपको तुरंत क्या जाएगा, या किसी को दिया है तुरंत भले आप न बोलो लेकिन याद आएगा कि नहीं याद आएगा। तो जो संस्कार बन गया है वो संस्कार कहां बैठा हुआ है, आपके अंतःकरण में बैठा है, और उस बैठने के कारण जैसे वह व्यक्ति दिखता है आपका वह संस्कार क्या हो जाता है, उद्भूत हो जाता, पैदा हो जाता है। तो दोनों संस्कार उद्भूत होंगे, ऐसा ध्यान देना, अच्छे भी संस्कार उद्भूत होंगे और कौन से संस्कार, बुरे भी संस्कार उद्भूत होंगे। इसी बात नहीं है कि बुरे संस्कार नहीं उद्भूत होंगे, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के संस्कार उद्भूत होंगे, पैदा होंगे। अब अच्छे संस्कार को क्रियान्वित करना या बुरे संस्कार को क्रियान्वित करना, यह आपके बस में है। पुरुषार्थ आपके अपने बस में है, क्या है, हमने शराब देखी, शराब पीने की जरा सी इच्छा हुई, हो सकता पीछे पिया हो, हम कह नहीं सकते भाई, लेकिन अब उस शराब की तरफ जाना, उसको खोलना खरीदना, ये किसके दिन हो जाएगा, आपके पुरुषार्थ के दिन हो जाएगा। अब मन में तो आया पी रहे हैं तो हम भी जाएं, लेकिन आपका पुरुषार्थ क्या करेगा, उसको नहीं, कुछ भी हो जाए अपने आप को रोकना है, वहां नहीं जाना है, तो आपने अपने उस संस्कार को दबा दिया। मतलब एक बीज अंकुरित तो हो रहा था, आपने उसके अंकुर को क्या किया, तोड़ दिया, और जैसे अंकुर को तोड़ दिया तो वह कभी वृक्ष या पौधा नहीं बनेगा, अंकुर ही आपने क्या किया, संस्कार के पैदा होते ही उस संस्कार को क्या किया, तोड़ दिया, और उस संस्कार को और सींचना शुरू कर दो तो वो वृक्ष बन जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर बहुत दृष्टांत अच्छा सा है, इधर समुद्र है किधर है, किधर है, इधर है ना, इधर समुद्र है ना, हवा इधर बह रहा है, ऐसे यदि हवा इधर बह रहा है हम इधर साइकिल चला के जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे। तो हवा जो बह रहा है वो है संस्कार, और जो साइकिल चला रहे हैं वो क्या है, पुरुषार्थ है। तो देखना यदि संस्कार के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, यदि समुद्र में जाना मान लो नीचे गिरना है, समुद्र में जाना मतलब क्या हुआ, कहते जाके समुद्र में डूब मरो, अर्थात समुद्र में जाना मतलब क्या हुआ, नीचे गिरना है। तो बुरे संस्कार पैदा हुए और बुरे संस्कार के अनुसार परिश्रम भी करो तो जल्दी से बुरे भी बन जाओगे। तो यदि बुरे संस्कार कभी पैदा भी हुए तो आपको क्या करना है, परिश्रम अच्छे तरफ उल्टी साइकिल चलाना है। हाँ चलाने में थोड़ी सी क्या होगी, मेहनत तो होगी, लेकिन आप नीचे गिरने से क्या करोगे, बच जाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो भाई, बुरे विचार उद्भूत होवे, ये किसके कारण उद्भूत हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के कारण, ध्यान देना सूक्ष्म शरीर के कारण बुरे संस्कार उद्भूत हो रहे हैं, लेकिन उनको किसने, स्थूल शरीर से कर्म करोगे उसी के अनुसार तो पेड़ बन जाएगा, और स्थूल शरीर से उस संस्कार को यदि हमने कर्म नहीं किया तो वहीं वो अंकुर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वो बीज समाप्त हो जाएगा, और फिर आपको गलत रास्ते में आपको जाने से क्या करोगे, बच जाया करोगे। ये क्लियर हुआ, ये साइकिल वाला दृष्टांत ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े वो हैं, सबके भीतर लोभ का संस्कार आता है, काम का संस्कार आता है, क्रोध का संस्कार सबके भीतर मौजूद है, लेकिन बार बार हम लोग कहते हैं जब गुस्सा आए लोभ आए तो वहां से हट जाओ। मान लो हमने धन देख करके क्या रहा है, लोभ आ रहा है, अब धन की तरफ जाएंगे तो लोभ और बढ़ता जाएगा, तो बार बार कहते हैं वहां से क्या करो, हट जाओ, किसी और चर्चा में लग जाओ। तो लोभ का जो संस्कार बीज पैदा हुआ था वो बीज थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और लोभ रूपी पाप से आप क्या करोगे, संग्रह रूपी पाप से आप क्या करोगे, बच जाओगे। अब मान लो लोभ आ रहा, उसको हमने क्रियान्वित कर दिया, आज पा लिया, धन ले लिया, तो कल फिर मैं मनाऊंगा, हे भगवान और कहीं फिर कथा नहीं सुनूंगा, फिर कहां देखूंगा, किसी का कुछ गिरा तो नहीं है, दाएं बाएं गिरा, रोज फिर हमारा, क्योंकि एक दिन मिल गया ना, एक दिन पड़ा हुआ धन मिल गया, तो रोज हमारी कहां दृष्टि रहेगी, कथा में नहीं रहेगी, कहां देखूंगा, कहीं किसी का गिरा तो नहीं है, तो वो संस्कार दोबारा हमें फिर वही गलत रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए पहले ही दिन लोभ का संस्कार पैदा हुए उसको क्या कर दो, तोड़ दो, तो आपका लोभ का जो संस्कार था वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आप संतोष के संस्कार में आ जाओगे, अच्छे संस्कार में आप आ जाओगे। तो सूक्ष्म शरीर का काम क्या है, बोलो भाई, सूक्ष्म शरीर का काम क्या है, हर प्रकार के संस्कारों को संग्रहित करके अंकुरित करना, अंकुरित करना, अंकुर का काम है, संस्कार सारे इकट्ठे हैं किसमें, कारण में, संस्कार इकट्ठे हैं कहां, कारण में, और संस्कार का अंकुर कहां फूटता है, सूक्ष्म में, और उस अंकुर का जो वृक्ष बनता है वह कहां बनता है, स्थूल में, बस ये अंतर समझ लेना, तीनों का अंतर आ गया। सारे स्टोर हैं आपके कारण शरीर में, यदि कारण शरीर में स्टोर न होए तो इस सूक्ष्म में उसका संस्कार पैदा ही नहीं होगा। जैसे मैंने बताया मेरे को शेर का संस्कार नहीं पैदा होता, पता नहीं क्यों नहीं पैदा होता, क्योंकि हमने कभी शेर, हो सकता है पूर्व जन्म में न खरीदा, उसमें संस्कार ही नहीं पैदा होता, क्या करे, कभी नहीं आता, सही बता रहा हूं, शेयर मार्केट का संस्कार आता ही नहीं, आज तक समझ नहीं आया, समझने का मैंने एक आध दो बार प्रयास भी किया है, क्या ऊपर नीचे होता है तो मेरे को बता दे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। ताश का संस्कार नहीं पैदा हुआ, शराब का संस्कार नहीं पैदा हुआ, जबकि ऐसा नहीं, हमने भी बताया, मैं रोज आपसे कहता, मैंने भी इंजीनियरिंग किया, हॉस्टल में रहा, ऐसा नहीं जानते हॉस्टल में कैसे कैसे बच्चे रहते हैं, रिवाल्वर, वो कट्टा, बंदूक सब लेकर चलते हैं, बमबाजी भी चलती है इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टलों में, और पहले के समय बहुत तो चलता था, लेकिन कभी किसी की हत्या करने का, मारने का कोई संस्कार पड़े नहीं, पता नहीं क्यों, किसी को हमने रेगी नहीं लिया, किसी को रेगी नहीं लिया, किसी को एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया, भले मैंने 4 थप्पड़ खा लिए होंगे, 10 थप्पड़ खाए होंगे, रेगिंग में भाई सब मार खाते हैं, उसमें तो अब क्या बताएं, उस समय हमारे समय तो बहुत भयंकर होती थी, लेकिन फिर भी मेरा अपना संकल्प था मैं किसी को नहीं मारूंगा, और हमारे अपने ही दोस्त कहा है मैंने 10 खाया तो 20 मारूंगा, 20 खाया तो 40 मारूंगा, उनके भीतर एक हिंसा का बदला लेने का क्या था, संस्कार था, लेकिन मेरे मन में वो संस्कार था ही नहीं, तो अनुकूल मौका मिलने पर भी मैंने उसका कोई उपयोग किया नहीं। तो यदि संस्कार है कहां, कारण में, तो सूक्ष्म में क्या होगा, अंकुर फूटेगा, और सूक्ष्म में अंकुर फूटेगा तो इसको क्रिया रूप में हम कहां से लाएंगे, स्थूल शरीर में क्रिया रूप में लाएंगे। तो आपको क्या करना है, अंकुर फूटते ही उसको क्या करना है, बुरे संस्कार को दबा देना है, ठीक है ना, और अच्छे संस्कार को क्या करना है, बुरे संस्कार को दबाना है अच्छे के द्वारा, और बाद में अच्छे को भी क्या करना है, छोड़ देना नहीं, अच्छा संस्कार भी कभी कभी आपके बंधन का हेतु बन जाएगा, क्योंकि वो भी आपको भाई नरक नहीं ले जाएगा तो कहां ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के भी हम क्या सुखी रहेंगे, क्या बोलो भाई, ब्रह्मा को भी अशांति होती नहीं होती, विष्णु को भी अशांति है कि नहीं है, न अशांति होती होवे तो क्यों अवतार ले में बताओ, अवतार लेकर के कितनों कितनों को मारना पड़ता है, तो इन सब से भी आपको कहां जाना है, एकदम ऊपर, अर्थात अपने अंतःकरण को पूरी तरह से संस्कारों से क्या कर दो, रहित कर दो, तो आपने सूक्ष्म शरीर को आपने क्या किया है, जीत लिया, अंकुर कोई टूटे ही नहीं। अच्छा, तत्कारणम स्मितम, अब ये दृष्टांत के माध्यम समझ लेना, ये बहुत गूढ़ चीज है, बीज कहां रहते हैं, कारण में, अंकुर कहां पैदा होता है, सूक्ष्म में, सूक्ष्म में अंकुर फूटता है, अब वृक्ष कहां बनता है, क्योंकि अंकुर फूटे और उसको खाद पानी ना दो तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सूक्ष्म में संस्कार तो पैदा होगा लेकिन उस संस्कार को भोगो मत, तो संस्कार अपने आप क्या हो जाएगा बताओ, कितनों को याद रहता है, आप कितनों को देखे होंगे, और कितनों को देखने के बाद मन में संस्कार पैदा हो गया होगा। लेकिन संस्कार पैदा होने के बाद यदि आपने उस वस्तु को भोगा नहीं तो क्या उसकी याद आती है क्या? और उस वस्तु को भोग लो और फिर 50 साल के बाद भी वो वस्तु दिख जाए तो आपको क्या आएगा? तुरंत याद आ जाएगा, संस्कार वृक्ष बन जाएगा। इसलिए क्या करना है, आप अपने भीतर जो संस्कार हैं उस संस्कारों को हटाना है। तो क्या करना है, यदि संस्कार बीज रूप में पैदा हुए तो बीज को ही क्या करना है, ओ अंकुर को ही क्या करना है, तोड़ देना है, समाप्त कर देना है। तो आप सूक्ष्म से भी जीत गए और धीरे धीरे सारे बीज समाप्त हो जाएंगे। तो वो अंदर कैसे बीज पड़े हैं, बिना अंकुर के बीज पड़े हुए हैं, भुने हुए चने की तरह बीज पड़े रहे हैं। तो उन बीजों के रहने से कोई फर्क पड़ता, क्योंकि वो बीज ने दूसरा वृक्ष नहीं बनाएंगे, वो खाने के काम में आएंगे, चना भुना हुआ चना खाने के काम में आएगा, लेकिन दूसरे वृक्ष को पैदा करके हजार बीज को पैदा करेगा नहीं। तो आपके भीतर का जो संस्कार है ना, जिनके सारे के अंकुर क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, अब वो अंदर पड़े भी रहेंगे तो भोग के काम तो आएगा लेकिन दूसरा संस्कार पैदा नहीं करेगा, दूसरे हजार संस्कार नहीं पैदा करेंगे। नहीं तो एक बीज ने हजार संस्कार पैदा कर देता है, एक काम ने हजार वासनाओं को क्या करता है, पैदा कर देता है। तो तस्य अंतर वासना जालम, उस सूक्ष्म के शरीर के भीतर जो वासनाओं का समूह है उसका नाम क्या है, कारणम स्मितम, कारण शरीर कहा गया है। अब और बताया, तस्य प्रवृत्ति हेतु, उसकी प्रवृत्ति का जो कारण है, किसकी, वासनाओं की प्रवृत्ति का जो क्या है, कारण है। अब बुद्धि आश्रय है, बुद्धि आश्रय, और जो बुद्धि का आश्रय है, जिसके आश्रय पर कौन रहती है, बुद्धि रहती है, तुरियम स्याद, उसका नाम है तुरीय, चौथा पद। क्योंकि वो न होवे न कौन है, ये जो सत्ता न होवे न कौन सी सत्ता, आत्म सत्ता न होवे न भाई, चेतन शक्ति न होवे न तो न बीज अंकुर होगा, न क्या होगा, वृक्ष बनेगा ना होगा। तो सबका सत्ता देने वाला, सबको शक्ति देने वाला कौन है, ये चौथा पद है, कौन है, चौथा, जिसका नाम क्या है, तुरीय पद है। यदि तुरीय न होवे, सब किसके आश्रय पर रहते हैं, मैं के आश्रय, आत्मा के आश्रय पर ही सब कुछ रहते हैं। यदि आत्मा न होवे न तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चौथा सबका जो महाकारण है उसका नाम क्या है, तुरीय है। उसे अभी देखना, दोनों अंतर बता रहा हूं, एक अभी पहचान करनी है। अभी मैंने बताया था कि जो बीज अंकुरित होते हैं उसका कारण कौन हुआ था, बाहर का संग, और अब क्या बता रहा था, चौथा है। लेकिन बाहर का संग भी होवे, लेकिन तुरी यदि उसको सत्ता न देवे तो बाहर का संग क्या काम करेगा, जैसे गहरी नींद में आप हो जाओ, और गहरी नींद में आपके पास में कुत्ता सो जाए या बकरी सो जाए या बिल्ली सो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई संस्कार पैदा होगा क्या, क्योंकि वहां तुरी जो चौथा है तो, लेकिन विशेष रूप में नहीं मौजूद है, किस रूप में, सामान्य रूप से, विशेष रूप से मौजूद नहीं है। विशेष रूप से न मौजूद होने के कारण आपको कोई संस्कार पैदा ही नहीं हो रहा है। तो सबका मूल कारण कौन है, चौथा तुरीय पद है, जिसको हम बोलते हैं कौन, आत्म तत्व है। अब आगे चलें, तो महाराज ये संस्कार कैसे पैदा हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र मौजूद है, आत्मा तो सर्वत्र क्या है, मौजूद है, तो संस्कार भी पैदा होते रहेंगे। कि नहीं, आत्मा तो किसी का कारण नहीं बनती है, और सबका कारण वही है, किसके द्वारा, बुद्धि में प्रतिबिंबित हो करके, बुद्धि में आत्मा किसी का कारण नहीं है, और सबका कारण कौन है, इसको अध्यात्म रामायण में ग्रंथ है, अध्यात्म रामायण सुना है ना, किसका लिखा है, वेदव्यास जी का लिखा हुआ है, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्भूत है। वहां एक प्रसंग है, राम हृदय स्त्रोत है, कौन सा है, राम हृदय स्त्रोत है। वहां एक बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है कि जब अयोध्या से राम जीत के आए तो सारे वानर सेना भी आई थी, तो सबको दक्षिणा जो दो देना था भगवान राम ने दे करके विदा कर दिया। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े थे, तो हनुमान जी जब हाथ जोड़े खड़े थे तो हनुमान जी को देख करके राम ने सीता से कहा कि हे सीते, हनुमान हम दोनों का भक्त है, निष्काम भक्त है, यह ज्ञान का अधिकारी है, इसको आप ज्ञान का उपदेश दो। तो सीता जाती है किसके पास है? हनुमान के पास है। हनुमान जी से कहती हैं कि हे हनुमान, धन्य हे हनुमान, राम का पैदा होना ठीक है, धनुष को पूतना को नहीं, तारका को मारना, तारका को, तारका स्वाहू को मारना, अहिल्या का उद्धार करना, धनुष को तोड़ना, बाली को मारना, सुग्रीव को राजा बनाना, समुद्र पे पुल बांधना, रावण को जीतना, और फिर राम का जो राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ, यह सब काम किसने किया बताओ? बड़ा मुश्किल काम, मैंने किया। कौन कर रही है? सीता कर रही है। बताओ मैंने किया? लेकिन एक मैं आपसे रोज बता रहा हूं, ये ध्यान देना, कौन बनेगा करोड़पति वहां ना बोल देना, नहीं हाथ जाओगे, क्योंकि वहां यदि पूछेंगे अमिताभ बच्चन, शिव का धनुष किसने तोड़ा, और चार एक च्वाइस दिया जाएगा, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, रावण ने, तो आप किसमें टिक लगाओगे? क्या ब्लॉक किया जाए, क्या बोलते, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। तो राम को लॉक करोगे तभी जीतोगे, और कहीं सीता को लॉक कर दिया ना तो क्या करोगे? क्योंकि अज्ञानियों को ना अज्ञान की भाषा पढ़ानी पड़ती है, वो सब ज्ञानी नहीं है, वो सब तो क्या है, देहाभिमानी है। तो देहाभिमानियों को कौन सी भाषा पढ़ानी पड़ती है? अरे भाई एक बच्चा है आपका, छोटा बच्चा है, वो पानी मांगता है तो क्या बोलता है? बच्चों की भाषा पानी के लिए क्या है? मम। अब जो आपके यहां हो, हमारे यहां मम है, मम। तो अब बच्चे को भी यदि पानी पिलाना हो तो मां क्या बोलती है? बेटा मम पिएगा, बेटा मम लेगा। अब मम माने क्या हुआ बताओ? अब बच्चे की जो भाषा है, यदि बच्चे के साथ बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा? मां को कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी? बच्चे की भाषा। अपनी भाषा बोलो तो बच्चे को कोई मतलब है? आपकी भाषा। इसलिए संसार में यदि बोलना पड़ेगा तो कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी? हमें बोलना पड़ता है, क्या करें? आप बोलते हो कहां से आए हो? मैं कहां बोलता हूं, कहां से आया हूं? बोलो भाई, हरिद्वार से। हरिद्वार छोड़े 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। इसके पहले मैं वहां था, कहां था, हरियाणा में था, इसके पहले इंदौर में था, इसके पहले और कहां दिल्ली में था, कहां बता दूं बताओ? लेकिन बोलना पड़ता है कहां से आया हूं, हरिद्वार से, क्या करूं? कौन माता पिता है बोलना पड़ता है, इनके पुत्र हैं और क्या बताऊं? कहते महाराज जी आपका अपना आश्रम है, अब क्या करूं, अपना तो कुछ भी नहीं, अपना शरीर भी नहीं है, है तो बोलना पड़ता है, गुरु जी का है। अब गुरु जी का है तो गुरु जी लेके गए क्या? वो भी यही छोड़ गए, यदि उनका हुआ होता तो जब ऊपर गए थे तो क्या किए होते? लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें? आपको यही भाषा समझ में आती है, दूसरी भाषा आपको समझ में नहीं आती है कि मेरा तेरा करके जिए है ना हम लोग, तो हमेशा पूछते महाराज जी आपका अपना है? हम कहते हैं साधना समय में रहता हूं, महाराज जी आपका अपना है? हम कहा अपना तो शरीर भी नहीं है, किसको मैं अपना कहूं? और जिसने भी अपना माना है उसका भी वो अपना तो है ही नहीं, तो कैसे हम कहें अपना है? लेकिन अब बोलना पड़ता है, हाँ भाई मेरा नहीं है, गुरु जी का है, अब क्या करूं? अब कहें गुरु जी का है तो क्या गुरु जी ने बनवाया क्या? नहीं, वो भी नहीं बनवाए, वो दूसरे गद्दी पे बैठे हैं, वो भी बाहर से आके वहां बैठ गए हैं, बताओ किसका माना जाए, मेरे को बता दो। तो व्यवहार चलाने के लिए सब बोलने पड़ते हैं, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, ये मेरा अटैची है, लेकिन वास्तव में परमात्मा मेरा शरीर भी नहीं है तो क्या बोले? तो ये सब करने वाला कौन था बोलो भाई? शिव का धनुष किसने तोड़ा? फिर बोल, अब यहां तो बोल दो, यहां कौन बनेगा करोड़पति वाले नहीं हो भाई, यहां कुछ नाम नहीं मिलेगा। किसने तोड़ा है? सीता ने। रावण को किसने मारा? सीता ने। समुद्र में पुल किसने बांधा? सीता ने। राम को राजा किसने बनाया? सीता ने। राम क्या करते हैं? राम तो न आते हैं, न जाते हैं, न कुछ संकल्प करते हैं, न कुछ विकल्प करते हैं, राम तो आनंद की मूर्ति, परम शांत, असंग निर्लेप है। अब सोचे ना कितना बड़े ऊंची बात बताई गई। तो आत्मा स्वयं में कुछ नहीं करता, कोई संस्कार नहीं पैदा करता, कोई असंस्कार नहीं पैदा करता, आत्मा का किसी के साथ कोई विरोध है ही नहीं, आत्मा के साथ किसी का कोई विरोध है ही नहीं। तो विरोध कहां दिखता है? कहता जीव में, जब उस आत्मा की परछाई बुद्धि में पड़ जाती है तो विशेष चमक हो जाती है, और जब विशेष चमक हो जाती है किसमें? उसी बुद्धि में से, तो उसी आत्मा में विशेष सत्ता आ जाती, विशेष बल आ जाता है, और उस बल के कारण वह किसी को अच्छा मान लेता है, किसी को वह क्या मान लेता है, बुरा मान लेता है। जैसे सूर्य की किरणों का कभी किसी से कोई विरोध है क्या? इन सूर्य की किरणें यदि लेंस से गुजार दो तो कूड़ेदान को क्या करेंगी, जला देंगी। तो लेंस से गुजरा तो कूड़ेदान का विरोधी हो गया। किसका विरोधी हो गया? विशेष प्रकाश सामान्य को क्या करेगा, जला देगा कि नहीं जला देगा। तो ऐसे जो विशेष चैतन्य की विशेष परछाई पड़ती है, उस विशेष परछाई में ही ये अच्छा है ये बुरा है वो संस्कार पैदा हो जाते हैं, अन्यथा वो संस्कार पैदा होंगे ही नहीं। किसमें? आत्मा में, शुद्ध आत्मा में कोई संस्कार पैदा होता नहीं। इसी को बता रहे हैं 114वें श्लोक में। तत्सारभूत बुद्धो यत् प्रतिफलितम् तु शुद्ध चैतन्यम् जीवः स उक्तः आद्यैर्यो अहमिति स्फूर्त किद् बपुषि। तत्सारभूतम्, तत् माने उसका सार स्वरूप। किसका सार स्वरूप है? तत् माने उसका, उसका माने किसका? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर का जो सार है, मूल है, वह कौन है? बुद्धि। सूक्ष्म शरीर का जो मूल है वह कौन है? बुद्धि। बुद्धि में यत् प्रतिफलितम् है, शुद्ध चैतन्यम्, जो शुद्ध चैतन्य की परछाई पड़ी। प्रतिफलित माने परछाई पड़ी, किसकी? शुद्ध चैतन्य की। कहाँ पड़ी परछाई? बुद्धि में। तो जीव स युक्त, उसी का नाम है जीव। उसी का नाम क्या है? जीव। जीव स युक्त, उसी का नाम जीव कहा गया है। आद्यैर्यो अहम इति स्फूर्त कृति भी। आद्य माने सबसे पहले, जो मैं के रूप में स्फुरंग करता है, उसी का नाम क्या हो जाता है? जीव। अन्यथा जब तक बुद्धि में परछाई नहीं पड़ती, किसकी? उस चैतन्य की, तब तक क्या रहता है? मैं का भी स्फुरंग उसमें हूं होता है। हूं माने सत्ता है, सत्ता है। जैसे गहरी नींद में जाओ, कहां पहुंचे? अब बुद्धि वहां यूं हो गई है, क्या है? उल्टी हो गई है, सुप्त हो गई है। अब बुद्धि में परछाई नहीं पड़ रही है, किसकी? चैतन की। अब भी चैतन मौजूद है, लेकिन बुद्धि में परछाई नहीं पड़ने से अब उसको सुख दुख मान अपमान अच्छा बुरा कुछ लग रहा है क्या? लेकिन जैसे बुद्धि उल्टी हुई, मतलब अंतर्मुख होकर बजाय क्या हो गई? बहिर्मुख हो गई। अब चैतन्य की उसमें क्या पड़ गई? परछाई पड़ी। तो मैं डॉक्टर, मैं महात्मा, मैं इंजीनियर, फिर तुम नौकर, मैं के बाद क्या हो गया? इदम। और इदम बाद सारा संसार खड़ा हो जाता, नहीं हो जाता? ऐसे जब मरा हुआ व्यक्ति है ना, ध्यान देना, मरे हुए व्यक्ति में चैतन्य मौजूद है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति के साथ चैतन्य रहने से भी चैतन्य का कोई विरोध है, लेकिन बुद्धि वहां नहीं है। क्या है? वहां बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि के न होने से ना, उसमें न आंख रूप देखती है, न कान शब्द सुनता है, न जीवा के रस लेती है। मैं मरे हुए आदमी के सर के ऊपर कितने गुलाब डाल देते हो, तो खुशबू लेता होगा, ऐसे ऐसे करता होगा, नहीं होता है? मुख में वो डालते हो क्या? शहद डालते हो तो जीभ घुमाता होगा, रस आता है क्या? अरे अब उसको कुछ भी रस नहीं है, क्यों नहीं है? आत्मा तो है, लेकिन आत्मा सुख दुख मान अपमान सुगंधि दुर्गंधि कुछ को लेने वाली नहीं है। क्या है? नहीं है। लेकिन उसी आत्मा की परछाई कहां पड़ती है? जब बुद्धि में पड़ती है, अब बुद्धि से प्रकाश इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलता है, तो वह आंख से निकला तो रूप को देखेगी, कान से निकला तो शब्द को सुनेगी, जिह्वा में मन आ गया तो क्या निकलेगा? रस को लेगा। त्वग इंद्रिय में आ गया तो क्या लेगा? स्पर्श को लेगा। लेकिन जब तक बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य न होवे, तब तक उसको हूं की सत्ता रहता है, उस अवस्था में आनंद रूप रहता है। गहरी नींद में अविद्या तो है, गहरी नींद में क्या है? अविद्या तो है, लेकिन क्रिया में नहीं है, मतलब मन शांत है ना, तो अंकुर नहीं फूटा है, कारण रूप से विद्यमान है, तो उससे हमें कोई दुख नहीं था। लेकिन आप आनंद में थे, दुख में थे, बताओ कितना आनंद था, किस अवस्था में? गहरी नींद में, सुख में गहरी नींद में कितना आनंद में थे, हूं की सत्ता थी, लेकिन मैं डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं कि मालिक हूं कि नौकर हूं कोई बोध नहीं है। लेकिन जैसे जगते हैं, जगे माने जैसे हमारा अंतःकरण क्या हुआ, उठा जगा, और उस चैतन्य की परछाई अंतःकरण में पड़ी, तो मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, तमाम विकल्प आ जाते हैं, और सारे विकल्प से हम क्या हो जाते हैं, दुखी और अशांत तो होते रहते हैं। तो आप क्या हैं, बोलो भाई, वो प्रतिबिंब नहीं है, क्या है, जिसकी परछाई पड़ी हुई है आप वो हो, जिस चैतन्य की परछाई बुद्धि में पड़ने के बाद बुद्धि क्रियान्वित हो जाती है, बुद्धि क्रियान्वित हो जाती है, और वही बुद्धि का प्रकाश आंख नाक मुख से निकल करके सारे विषयों को प्रकाशित करता है, जो जिसके कारण शरीर में एक स्फूर्ति आ जाती है। यदि वो परछाई न होवे, वो परछाई नहीं, चैतन्य न हो तो परछाई किसकी पड़ेगी, अब परछाई नहीं पड़ेगी तो स्फुरंगा कहां से आएगी, तो सारी स्फुरंगा का मूल रूप कौन है, चैतन्य है, तो वह चैतन्य ही कौन हूं, मैं हूं, और जिसको उस चैतन्य का ज्ञान हो गया वह सब कुछ बन जाता है, क्योंकि उसी चैतन्य की परछाई आपकी मेरी सबकी बुद्धियों पर करके सब अपने संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, फिर उसका किसी के साथ न राग रह जाता है न किसी के साथ कोई द्वेष रह जाता है। ठीक है, आ गया जीव समझ में, आ गया जीव क्या है, जीव माने क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर का सार स्वरूप जो बुद्धि है, बुद्धि में जो चैतन्य की परछाई पड़ी है, उस परछाई का नाम ही क्या है, जीव कहा गया है, और उसी परछाई के कारण ही शरीर में मैं की स्फूर्ति होती है, और इसके पहले हूं होता है, इसके पहले क्या था, हूं सत्ता मात्र रहता है, और जैसे परछाई पड़ी क्या जाता है, मैं हूं, और फिर मैं हूं के बाद क्या जाता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कूल हूं, और वृत्ति बदलती चली जाती है, लेकिन पहले सत्ता होती हूं, है सत्ता मात्र, बाद में क्या हो जाता है, मैं पैदा करने वाला कौन है, यह जीव ही पैदा होता है मैं के रूप में। ये सारा बागी का वो हो रहा है आपका क्या पोस्टमार्टम, ये सारे शरीर के विषय में ज्ञान, कौन इसमें सत्ता दे रहा है, किसके कारण ये शरीर सत्तामान सा दिख रहा है, वही चैतन्य के कारण नहीं, हाँ चैतन्य तो है ये मूल, लेकिन चैतन्य के कारण न क्रिया है न क्रिया है, चैतन्य की जब परछाई पड़ जाती किसमें, बुद्धि में, तो उसमें आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, जीवा रस लेती है, और जब तक परछाई नहीं पड़ी तब भी चैतन्य मौजूद है, इन चैतन्य के मौजूद होने पर भी उसको क्या होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता, उस अवस्था में सामान्य ज्ञान रहता है, क्या रहता है, सामान्य सत्ता रहती, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं रहता। अगला श्लोक, इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, बताओ प्रकाश सूर्य का है कि चंद्रमा का है, लेकिन हम बोलते हैं कि इसका प्रकाश है रात में, चंद्रमा क्या प्रकाशित हो रहा है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश है क्या, है प्रकाश देने वाला एकमात्र कौन है, सूर्य, ऐसे ही जो प्रकाश क्रिया दिख रही है वो बुद्धि की नहीं क्रिया है, बुद्धि में जो चैतन्य की क्या पड़ी, परछाई पड़ी, और वो परछाई का प्रकाश से संसार के विषयों में पड़ा, तो हमें संसार के विषय दिखाई दे रहे हैं, संसार के विषय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि का अपना कोई प्रकाश है, इसको हम कई बार यहां बताते हैं, जैसे है क्या दीवाल है, पंचदशी में कौन सा प्रकरण है, आठवां है, नहीं आठवां नहीं, पांच, हाँ एक मिनट, हाँ आठवां है, दीवाल है, बाहर एक दर्पण है, उस सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ा, दर्पण पे, और दर्पण का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ा, दीवाल पे, पूरी दीवाल जगमग हो गई, तो हमने पूछा यह दीवाल किस प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, बोलो भाई, खय आदित्य है या दर्पण आदित्य है, खय आदित्य माने आकाश का सूर्य है अथवा दर्पण वाला सूर्य है, तो कहा दर्पण वाले सूर्य से प्रकाशित हो रहा है, कहे नहीं इसका प्रकाश में दो प्रकाश हैं, एक खय आदित्य है, दूसरा कौन है, दर्पण आदित्य, तो शिष्य ने पूछा महाराज हमें तो एक ही सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, यहां दो तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहा भाई एक दर्पण यहां है, एक दर्पण यहां है, अब बीच में जो खाली जगह है, ध्यान देना, विशेष प्रकाश यहां भी है, अब विशेष प्रकाश कहां है, बगल में, लेकिन बीच में जो खाली जगह है वहां भी तो प्रकाश है। तो जो वो प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है, वो है खर आदित्य। और खर आदित्य का ही प्रकाश किस पे पड़ा? दर्पण पे। और दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर जो पड़ा उसका नाम क्या है? दर्पण आदित्य हो गया। तो ऐसा ही एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में जो बीच में चिंतन रहित होता है वह कौन सा प्रकाश होता है? शुद्ध आत्मा का प्रकाश होता है। शुद्ध आत्मा वहां रहता है। और जब वृत्तियों के साथ हम हो जाते हैं तो हम आत्मा ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन जीव का प्रकाश वहां का है। वहां किसका प्रकाश है? इसलिए हमें हमेशा रहने का प्रयास करना चाहिए। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था। जिसे जागृत और सुसुप्ति के बीच में जो बीच की अवस्था है वह अवस्था कौन सी है? सामान्य आत्मा की अवस्था है। जागृत या स्वप्न से जब जागते हैं तो जो बीच की अवस्था होती है वह अवस्था कौन सी है? सामान्य अवस्था। एक वृत्ति से दूसरे वृत्ति के बीच में सामान्य अवस्था होती है, बाद में क्या रहती है? विशेष अवस्था होती है। तो यदि आप सामान्य में रहे हमेशा, अब बीच में कभी कभी वृत्ति बहिर्मुख हो भी जाए और फिर सामान्य में पहुंच गए, तो अब बीच की बहिर्मुख हुई वृत्ति न आपको दुख नहीं देती है। पंचदशी में आता, उसमें त्रिपुरा रहस्य में आता है, दुपट्टा रंगते हुए देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा होगा। जब दुपट्टा कलर करते हैं तो उसका आधा भाग इधर डुबोते हैं और आधा भाग इधर डुबोते हैं। अब बीच में ना डुबोते नहीं है, लेकिन ये रंग अपने आप बीच में चढ़ जाता है। तो हम पहले भी ब्रह्माकार थे, ध्यान देना, बाद में भी क्या बने हैं? ब्रह्माकार बने हैं। अब बीच में थोड़े समय के लिए हम क्या बन गए? विषयाकार बन गए। तो विषयाकार होते हुए भी हम कहां रहेंगे? ब्रह्माकार रहते हैं। वह विषयों का संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार न बनने से वह विषयाकार जो वृत्ति है आपके बंधन का हेतु नहीं बनेगी। एक ज्ञानी की अवस्था होती है। अज्ञानी क्या करता है? पहले भी विषयाकार रहता है, अब बाद में भी क्या होता है? विषयाकार रहता है। अब बीच में वो ब्रह्माकार दिखता है, लेकिन ब्रह्माकार होता हुआ भी बीच में भी वो संसारी डाले रहता है। तो इसलिए उसका वो संस्कार बन जाता है थोड़ी देर के लिए। हम पहले भी संसार में थे, थोड़ी देर के लिए मंदिर दिख गया तो क्या किए? बोलो ओम जय जगदीश, हरे स्वामी जय जगदीश, रे बोल दिया, और फिर जाके संसार दिख गया। तो जो बीच में हम मंदिर में गए हुए से दिख रहे हैं, तो बताओ मंदिर में गए हैं कि संसार में कई रंग चढ़ा हुआ उस बीच में? अरे संसार का ही रंग चढ़ा। इसलिए मंदिर में जाते हुए भी ध्यान रहता जूते पे, रहता है कहाँ? टाइम पे, कितना हुआ, जल्दी 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 चलो। हाँ, तो बीच में भी गए हैं तो संसार में ही गए हैं, ध्यान देना। इसलिए उसका संस्कार बनता है। अज्ञानी क्या करता है? पहले भी शांत था अपने स्वरूप में, सुसुप्ति में मान लो, अब बीच में संसार में तो गया, लेकिन लगता है कब संसार छूटे, कब संसार का व्यवहार समाप्त होए। कई गृहस्थी होते हैं, कब बच्चों बेटियों की शादी ब्याह हो, एकदम खाली हो जाए, फुर्सत हो जाए अपना परमात्मा का चिंतन, उससे निकलने की तड़प रहती है, फिर कहां बैठने की इच्छा होती है? अपने उसी स्वरूप में। तो बीच का जो संसार है ना, वह संसार उसको बाधित नहीं करता है, बल्कि संसार से वह क्या हो जाता है? परमात्मा में जाने की तड़प रखता है। तो बीच में भी जो है ना, वो भी परमात्मा में है, ऐसा मानना चाहिए। वह बंधन का हेतु जैसे ही एक जली हुई रस्सी होवे, रस्सी जैसे दिखती है, इन रस्सी उस जली हुई रस्सी से आपको बांधना चाहे तो बांध सकते हो क्या? तो ऐसे बीच में वो भले संसार में जाता हुआ दिख रहा है, इन संसार में जाता हुआ भी वो संसार में रहता, उसकी चित्त की वृत्ति कहां रहती है? जल्दी से एक काम निपटाओ और कहां बैठे? अपने शांत स्वरूप में रहें। तो बीच का जो संसार है ना, वह संसार उसको दुखी नहीं करता है। आ गया? तो संसार में कैसे रहना है समझ में आ गया? पहले ब्रह्माकार रहो, बाद में ब्रह्माकार रहो। अब बीच में प्रारब्ध के वेग से संसार में जाओगे ही, और जाना ही पड़ेगा, सही बता रहा, जाना ही। विवाह किए हो तो संसार में गृहस्थ धर्म का भी निर्वाह करना है, बच्चे हैं तो उनको स्कूल भी भेजना है, सारे काम करने हैं, लेकिन अंदर क्या रहे? एक कब जल्दी जल्दी निवृत्त हुए, कब पहुंचे? एक गांव की कहावत है, जब नई नई शादी होती ना लोगों की, गांव में है, शहर में तो सब खुला आम रहता है, शहर में तो ऐसी कोई मर्यादा नहीं है ना, कि शहर में है कोई मर्यादा, सहज मर्यादा विहीन लोग रहते हैं। गांव में है अभी पत्नी से बात भी कर ले हुए थे, गांव वाले उल्टे सीधे रहे, चार दिन साहब उसी के मुंह लगा हुआ बात कर रहा, तो बहाना खोजता है कब पानी पीने के लिए रसोई में चला जाऊं, कब कोई काम के लिए रसोई में चला जाऊं, और दो मिनट उससे बात करके बाहर भाग आता है। तो ध्यान ना, पहले भी हुआ था, बीच में भले ऑफिस में गया दुकान में गया, उसकी चित्त की वृत्ति कहां लगी है, पत्नी में। ऐसे ही हमारी चित्त की वृत्ति कहां लगी रहे, भले दुनिया के काम करते रहे लेकिन कहां लगी रहे, इस परमात्मा में लगी रहे। तो दुनिया का काम आपके बंधन का हेतु नहीं बनेगा। अब आगे दो संशय हैं, इस संशयों का समाधान कल लगभग लगभग एक चैप्टर पूरा हुआ। ये कहा जा रहा है कि महाराज जी, एक संशय है कि जल में यदि परछाई पड़ गई तो उस परछाई का जो रिफ्लेक्शन होता है वह दूसरे विषयों को प्रकाशित करता है, करता नहीं करता। अरे थाली में प्रकाश सूर्य की पड़े जो रिफ्लेक्शन होगा वह दीवार पर जाएगा, प्रकाशित करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे बुद्धि में जो चैतन्य की परछाई पड़ी तो क्या वह चैतन्य भी किसी को प्रकाशित करेगा क्या, एक ही संशय। और दूसरा है कि जैसे चंचल तरंग है, चंचल तरंगों में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंब भी क्या दिखता है, हिलता जुलता दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब के हिलने डुलने से क्या सूर्य हिलेगा डुलेगा क्या। उसी प्रकार से बुद्धि की चंचलता से आत्मा में चंचलता दिखती है, वास्तव में आत्मा तो न कहीं आता है न कहीं, वो तो एकदम शांत रहता। मैं बार बार कहता हूं, आप घर से आए थे, आए हो ना घर से, आप आए थे क्या, अरे कार आई थी, टैक्सी आई थी, टैक्सी के आने को आपने किसके ऊपर आरोपित कर लिया, अपने ऊपर आरोपित कर लिया, लेकिन आप आए गए नहीं, आपका शरीर आया गया, लेकिन शरीर के आने जाने से आपने आरोपित किसके ऊपर कर लिया, अपने ऊपर आरोपित किया। वास्तव में विचार किया जाए तो आप तो न कहीं आते हो न कहीं जाते हो, आप तो क्या हो, सर्वव्यापक हो। ये शरीर के आने जाने से आप में आना जाना दिखता मात्र है, लेकिन आपका कहीं आना जाना, ये सब भी चिंतन हम कब करेंगे, कल ही करेंगे, ठीक है ना, आज इतना ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।